ओम शांति। क्या सुना गीत? चरणों में जगह मांगी थी और उसने क्या कर दिया? दिल में बिठा दिया, अपने नैनों का सितारा बना दिया। ये मुरली किस कहां कब कौन से समय की है? आज की क्रिसमस की मुरली है, जहां एक तरफ बाबा बात कर रहा है हाथों में हाथ डालकर डांस करने की, तो दूसरी तरफ कुछ उर्दू की बातें चल रही है। तुम सब कौन हो? जहान के नूर हो, इस संसार की ज्योति हो, इस जगत की ज्योति हो, इस संसार की आंख हो, इस सृष्टि के श्रृंगार हो। शिववंशी कौन हो? नूरे रत्न हो। सिकंदर जब भारत आया था तो भारत के एक ऋषि से वो मिला, एक फकीर से। वो फकीर अपने हाथ में कुछ छिपाए हुए बैठा था। सिकंदर ने उससे कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, जो चीज छोटी सी और जो चमक रही है? उसने कहा, नहीं बताऊंगा। सिकंदर ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता है, और मैंने अगर कुछ ठान लिया वो ना हो, तुम्हें बताना पड़ेगा वो चीज क्या है जो तुम्हारे हाथ में है। उस फकीर ने कहा, जो चीज मेरे हाथ में है, तुम अब तक का तुम्हारी जो भी संपत्ति है वो सब संपत्ति तुम एक तरफ रख दो तो भी ये चीज उन सारी संपत्ति की तुलना में भारी है। तो सिकंदर ने एक बहुत बड़ा तराजू मंगाया और अपना सारा लूट का सामान, सारे ही खजाने एक तरफ रख दिए और फिर उस फकीर से कहा, अब तुम तुम्हारी वस्तु रखो। तो फकीर ने अपनी वो छोटी सी वस्तु, वो चमकीली वस्तु जैसे ही रख दी, वो पलड़ा भारी हो गया और सिकंदर का जो भी सामान था, जो भी खजाने थे, वो सारे हल्के हो गए, ऊपर चले गए। तो सिकंदर को तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ, पहले ही बहुत ज्यादा आश्चर्य था। वो कहने लगा, मुझे बताओ इसके पीछे का राज क्या है, मैं आपसे विनती करता हूं। तो फकीर ने कहा, क्योंकि तुम अब अनुनय विनय कर रहे हो, पहले तुम दूसरी भाषा बोल रहे थे, अभी भाषा दूसरी बोल रहे हो, इसके लिए मैं अभी बता सकता हूं तुम्हें वो चीज क्या है। पर इसके पहले कि मैं तुम्हें ये बताऊं वो चीज क्या है, उस फकीर ने वो जो वस्तु थी चमकीली, उस पर कुछ धूल मिट्टी डाल दी और फिर देखा, फिर उस वस्तु को वापस तराजू में रखा तो देखा कि वो वस्तु नीचे और बाकी जो सामान था, खजाना, वो ऊपर चला गया। क्या थी वो वस्तु? ये सत्य कथा है या किंवदंती है पता नहीं। सत्य असत्य कितना है ये जानना हमारा लक्ष्य नहीं है, पर इससे कुछ सीखना है। वो वस्तु कौन सी हो सकती है कि जिसमें धूल डालते ही वो नीचे हो गई, और जब धूल नहीं थी तो संसार की सारी संपदा उसके सामने तुच्छ थी। ज्ञान रत्न थे, और क्या थे? ईश्वर था, और क्या थे? सभी उत्तर सही है, परंतु कथा में कुछ और है। मणि था, मस्तक मणि था, और क्या था? निराकार आत्मा, सच्चा हीरा था, आत्मा रूपी सच्चा हीरा, और क्या था? वो कहता है कि ये जो आंख है, ये मनुष्य की आंख है, परंतु खुली हुई आंख। ये वह आंख है जो जागृत है, जो कि खुली हुई है। इस खुली हुई आंख में जैसे ही धूल और मिट्टी पड़ जाती है, ये अमूल्य से निर्मूल्य बन जाती है। जो इतनी मूल्यवान थी, अब वो उसका मूल्य कम हो जाता है। तो खुली हुई आंख का महत्व है। तो हे जहान के नूर, बताओ संपन्नता की आंख कब खोलोगे? बाबा किस आंख की बात कर रहा है? संपन्नता की, संपूर्णता की बात कर रहा है। तो आज बाबा किसको देख रहे हैं और क्या हो रहा है उसे? बाबा किसको देख रहा है? जहान के नूरों को देख रहा है। बाबा इन सभी आत्माओं को देखकर हर्षित हो रहा है। क्योंकि क्यों हर्षित हो रहा है वो? क्योंकि वह जानता है, जिनको देख रहा है शायद वो नहीं जानते, पर जो देख रहा है वो जानता है क्या, कि जो सामने बैठे हैं वो श्रेष्ठ आत्मा है, इस संसार की महानतम आत्मा है। गीत है ना, जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ, सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिठाओ, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। सूरज भाई का लिखा गीत, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, तुम सृष्टि का श्रृंगार हो। तो वो संसार की आंख, जगत का नेत्र, जगत के नयन, जगत की ज्योति हम हैं। तो बाबा ने क्या कहा आज, तुम सब कौन हो? जहान के नूर हो। और बाप के नैनों के सितारे हो। बाप तो कहां लेके चलते हैं? नैनों में ही लेके चलते हैं, अर्थात सदा नैनों में ही समाये हुए हैं बाप के। हमारे नैनों में वो और उसके नैनों में हम समाये हुए हैं। इस देह में बाबा ने कहा सबसे ज्यादा महत्व किसका है? नैन, आंख, नेत्र सबसे नाजुक। तो तुम जहान के नूर, तुम्हारे बगैर ये संसार का कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है इस संसार का। ऐसे तुम महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। जब तुम नैन के नूर, नूरे रत्न अपनी स्थिति पर रहते हो तो क्या हो जाता है? संसार श्रेष्ठ हो जाता है, संसार सुखमय हो जाता है। जब तुम अपनी स्थिति से नीचे उतरते हो तो क्या होता है? संसार असार हो जाता है। सारे संसार की नजर तुम पर है, सारा संसार तुमको कॉपी कर रहा है। लास्ट संडे की मुरली टीचर्स से मुलाकात, क्या कहा था टीचर्स को कि तुम आत्माएं जो स्टेज पर हो, अगर तुम में व्यर्थ चलता है तो तुम व्यर्थ सिखाने के निमित्त बन जाओगे। जैसे तुम्हें सेवा की गिफ्ट मिली हुई है, सेवा का शेयर तुम ले लेते हो, परंतु यदि तुम में यदि व्यर्थ चला तो तुम व्यर्थ सिखाने के निमित्त भी तुम ही बन जाते हो, क्योंकि तुम स्टेज पर हो, सारे विश्व की नजर तुम पर है। तो तुम जहान के नूर हो, जो गायन है, जो कहावत है संसार में, कौन सी कहावत है? तुम सोए तो जगत सोया, तुम जागे तो जगत जागा। ये गायन तुम्हारा है, तुम्हारी चढ़ती कला से विश्व की चढ़ती कला का संबंध है, तुम्हारी गिरती कला से, उतरती कला से विश्व की गिरती कला का संबंध है। सब कुछ तुम पर निर्भर है, सब का आधार तुम हो, इतनी तुम्हारी जिम्मेवारी है। जब जिम्मेवारी होती है तो व्यक्ति अलर्ट होता है, सजग होता है, जागती ज्योत होता है। तो बाबा पूछ रहे, सदा यह स्मृति में रहता है? सदा यह स्मृति में रख कर चलते हो? जहान के नूर जग को कहां तक रोशन कर रहे हो? बाबा पूछ रहे, पावर कितनी है तुम्हारी? 10 या 1000? कितने वोल्ट की पावर है? कितनी करंट दे रहे हो विश्व को? कहां तक? अनगिनत। अच्छा। तो कहां तक जग को रोशन कर रहे हो? अगर वो हद की लाइट, क्या कहा उसके लिए, अगर बंद हो जाती है, अगर बीच बीच में जलती नहीं है या बंद हो जाती है तो क्या होता है? अच्छा नहीं लगता है। तो अगर तुम जहान के नूर अगर हिलते रहे तो जगत का क्या हाल होगा, तुम जहान के नूर अगर हिलते रहे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। बाबा पूछ रहे हैं। ये समय मुरली कब की है, 79 की मुरली है। एक बहुत ही राजनीतिक हलचल के बाद का समय है ये, इतिहास का, भारत की राजनीति का जो समय है ये, 75 से 77 तक इमरजेंसी इरा चालू था। कितने लोगों को बंदी बनाया गया था, जेल में डाल दिया गया था, 1,00,000 से ऊपर अनुशासन पर्व कहा है जिसे विनोबा भावे ने, ये मुरली उसके बाद की चल रही है। जबकि संसार में हलचल है चारों ओर, तब बाप कह रहे हैं कि तुम अगर हिलोगे तो संसार का क्या हाल होगा, जगत का क्या हाल होगा। तो इतनी जिम्मेवारी है, याद रहती है तुम आधार मूर्त हो। इसी एक पैराग्राफ में कितने सारे सम्मान हमको मिल गए हैं, जगत की ज्योति, जगत की आंख, सृष्टि की आंख। फिर नीचे क्या कहा बाबा ने, आगे जैसे संसार में किसका गायन है, शंकर का क्या गायन है, आंख खोली तो 1 सेकंड में परिवर्तन हो गया। वो गायन किसका है, उसका नहीं, तुम्हारा। तुम कौन हो, शिववंशी नूरे रत्न हो। तुम जब आंख खोलोगे तो 1 सेकंड में परिवर्तन होगा, सारा संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सारे संसार की नजर तुम पर है। तो हे जगत के नूर, हे जहान के नूर, बताओ, पूछ रहा है भगवान, संपन्नता की आंख, संपूर्णता की आंख कब खोलोगे। ये संपूर्णता की आंख क्या है, किसे खोलने की बात चल रही है। ये आंख सदा खुली रहे, बाबा कह रहे हैं, ये आंख में धूल न पड़े, माया की धूल। अगर माया की धूल पड़ी, अगर आंख मलते रहे, अगर आंख खुली है परंतु बीच बीच में क्या कर रहे हैं, हल्के से झुटके खा रहे हैं, और सामने कौन बैठे हैं, भक्त आत्माएं बैठी है, नजर से निहाल होने के लिए भक्त आत्माएं बैठी है। कोई एक मंदिर में अगर हनुमान का पुजारी हनुमान के सामने बैठा है, अगर हनुमान जी झुटके खा रहे हैं तो गदा गिर रहा है, तो भक्तों का क्या हाल होगा, भक्त भी गिर जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तिहु लोक उजागर, त्रिलोकी को उजागर करने वाले हे हनुमान, तुम ज्ञान के सागर हो, बलधाम अतुलित बलधाम। ऐसे हनुमान यदि खुद सुधा माता झुटके खा रहे हैं तो भक्तों का क्या हाल होगा। अगर शेर पर सवार दुर्गा नींद में है, उसके चारों हाथ हिल रहे हैं और शेर भी सोया है, तो भक्तों का क्या दशा होगी, भक्तों की क्या, शेर को पकड़ के ले जाएंगे। तो संपूर्णता की आंख सदैव खुली रहे, बाबा ने कहा। उसमें क्या क्या हो रहा है, एक तो धूल नहीं पड़नी चाहिए, कोई भी धूल नहीं उसमें आनी चाहिए, आंख खुली रहे, आंख में धूल नहीं पड़नी चाहिए, एक। दूसरा, आंख मलना नहीं है, और झुटका नहीं खाना। झुटका अर्थात संकल्पों का घुटका, घुटका अर्थात घुटन, सफोकेशन, चोकिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में, संकल्पों की चोकिंग, संकल्पों की घुटन अर्थात व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प। आंख में अगर, आंख अगर हिलती रहे तो एकाग्र नहीं हो सकती, बाबा ने कहा, तुम भी एकाग्र नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भक्तों को नजर से निहाल करना है। भक्त ढूंढ रहे, आगे कहा भक्त तड़प रहे हैं तुम्हारे दर्शन के लिए, कहां है हमारे इष्ट देव। सारी मुरली आज भक्त और भक्ति पर है, भक्ति का क्या हाल होने वाला है आगे उसके ऊपर है, और भक्तों के लिए तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम्हारा महत्व क्या है, इस पर मुरली है। पहले बाबा शुरुआत कर रहे, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कैसे हो, कितने महान हो तुम, सागर स्वयं आया है किससे मिलने, किस में नहाने। कभी सुना है सागर नहाने आता है कभी? सागर जो सारे वसुंधरा की धुलाई करता है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ी है उसे आज, कि वो गंगा में नहाने आया हुआ है। क्या है ये वाक्य में, कैसी कैसा अद्भुत सा वाक्य है। क्या कह रहा है बाबा? ये कह रहा है कि सागर ये उसकी विनम्रता है, ये उसकी निरंकारिता है, या वो सब नदियों को आगे रख रहा है, या केवल भाषा का सौंदर्य, ये नदियों को आगे रख रहा है। तो सागर आया है स्वयं, सागर जिसमें सारी नदियां आती है, वो सागर नदियों के पास आया है नहाने के लिए, गंगा में नहाने के लिए। तो आंख सदा खुली रहे, आंख में कुछ गिरना नहीं चाहिए, आंख हिलना नहीं चाहिए, एकाग्रता कम नहीं होनी चाहिए। झुटके नहीं खाना है, संकल्पों के झुटके से भी मुक्त। ये जो अवस्था है ये हमारी अवस्था है। अमृत वेले बाप दादा ये रूपरेखा देख रहे थे, इसका क्या वर्णन करें। बाबा कह रहे आगे, तुमको भी पता है, क्या बताऊं, बीती सो बीती छोड़ो, यही कहा ना। अमृत वेले बाप दादा यह रूपरेखा देख रहे थे, कौन कितना हिल रहा है और कौन कितना एकाग्र है, यह रूपरेखा देखी, यह ब्लूप्रिंट आउटलाइन देख रहे थे बाबा सुबह सुबह अमृत वेला। और क्या देखा अमृत वेला, किसने कितना क्या क्या किया है। एक सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, एक सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, एक सेकंड में क्या कर्मयोगी स्टेज और कर्मातीत स्टेज। ये एक अभ्यास है आज की मुरली से, कि अभी अभी ये और अभी अभी वो, अभी अभी ये और अभी अभी वो, अभी अभी कर्म कर रहे और अभी अभी कर्म से न्यारे हो रहे, ये अभ्यास करने को कहा है बाबा ने, जो हमें प्रैक्टिकल में करना है और जो बहुत जरूरी है। एक सेकंड में फुल स्टॉप कहो या एक सेकंड में समेटने के लिए कहा है बाबा ने, समेट लो एक सेकंड में। जैसे कि कछुआ प्राणी का उदाहरण दे रहे बाबा, जीव जगत का उदाहरण दे रहे, वो कछुआ कैसे समेट लेता है स्वयं को, वैसे तुम्हें भी विस्तार जो हो रहा है तुम्हारे संकल्पों का, उसको समेट लो। किस किस को समेट लो, बाबा ने कहा संकल्पों को समेट लो। और समेट किस किसको समेटना है, और बहुत सारी चीजें इस मुरली में तो नहीं है, परंतु और बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने समेटने के लिए कहा है। अपने संकल्पों को समेटना है, अपने बोल को समेटना है, अपने कर्मों को समेटना है, अपने कार्य व्यवहार को समेटना है, संबंधों को समेट लेना है। ये सारा समेटने की शक्ति, समेटना अर्थात जो बिखरी हुई चीजें हैं उनको एकत्र करना, इकट्ठी करना। जो संकल्प बाबा ने एक मुरली चली है कभी 88 में, जिसमें कहा है तुम्हें सब कुछ समेटना है, उसकी लिस्ट दी है किस किस को समेटना है, देह को समेटना है, देह की जरूरतें, देह के संकल्प, देह के संबंध, जो भी देह से संबंधित चीजें हैं वो सारी समेटना है, और केवल एक संकल्प में टिकना है, कौन सा, अब घर जाना है। ये है समेटने की शक्ति। इसके लिए एक जबरदस्त वैराग्य की आवश्यकता है, इसके लिए एक संकल्प चाहिए। जैसे पक्षी होता है सुबह सुबह अपना घोंसला छोड़कर जाता है, वो राग की अवस्था है, और शाम को अपने निड में वापस जाने के लिए तैयार होता है, वो है वैराग्य की अवस्था। क्योंकि अभी उसको घर जाना है, शाम हो चुकी है, तो शाम हो चुकी है सृष्टि की, हमें भी वापस जाना है। इसके लिए समेट लेना है स्वयं को, हर चीज को समेट लेना है। जैसे सुबह उदाहरण दे रहे थे ना, कोई माता अगर भोजन बनाती है तो साथ साथ समेटती भी है, भोजन भी बनाती है पर साथ साथ समेटना भी चालू रहता है उसका, दोनों काम साथ साथ करती है। जैसे ब्रह्मा ने सब कुछ समेट लिया था एक सेकंड में, बाबा एक सेकंड में समेटने की बात कर रहे, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की बात कर रहे हैं, दोनों स्थूल कार्य व्यवहार धंधे वो जो भी है उसको भी धीरे धीरे विस्तार नहीं करना है। कुछ दिनों पहले मुरली में आए, तुम्हें और कोई नए रिश्ते नए संबंध नहीं बनाने हैं, जो है वही बहुत है, जो है वही बहुत है। अभी कल की परसों की मुरली में था ना, ये कर्म बंधन से कोई नहीं छूटेगा, कर्म भोग जो है कर्म बंधन है, इससे पहले इतने सारे हैं कि फ्रेश बॉन्डेजेस अभी क्रिएट नहीं करना है। बाबा ने किसी मुरली में ये भी कहा है कि किसी को बहन भी नहीं बनाओ और किसी को भाई भी नहीं बनाओ, स्पेशल जो है वही बहुत है। नए बंधन नए संबंध, इस कलयुग के जो भी संबंध है वो सभी बंधन है। ये बंधनों से छूटने का समय है, इसमें नए नए बंधन अभी बनाने नहीं है, समय जाने का है। समय कौन सा है? कल की मुरली कहां से चालू हुई थी? तुम कहां बैठे हो? ओम शांति, तुम कहां बैठे हो? साकार मुरली थी ना, कहां बैठे हो? संगम पर बैठे हो, तो समय की याद रहनी चाहिए। विश्वविद्यालय में बैठे हो, समय की तरफ इशारा दे रहा है बाबा। कहां बैठे हो, समय कौन सा चल रहा है, इसका निरंतर चिंतन हमारी बुद्धि में होता रहे, तो ही हम ये बंधनों को और नहीं बढ़ाएंगे। जो है वही ठीक है, उनको ही तो काटना है, उनको ही तो कम करना है। कितना बड़ा है, जितने भी बड़ा है उसमें से दुख ही मिला है बस, दुख के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं हुआ इस संसार में किसी से भी। सर्व अनुभव का रस में रहना है तो उनको निरस अनुभव होगा, हमें रहना है सर्व अनुभव के रस में। रहने का समय भी अभी है, सर्व संबंधों के अनुभव का रस, जो भी संबंध है वो एक से जोड़ना है बस। बहुत जोड़ के देख लिए जन्म जन्मांतर, प्राप्ति क्या हुई, हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं, ये धोखों की दुनिया है, धोखाधड़ी है यहां पर। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी समेटने की शक्ति। उदाहरण दिया कछुआ, कछुआ एक बड़ा ही मंद गति का प्राणी है, दीर्घायु है, स्टेबिलिटी का प्रतीक कहा जाता है उसे, बड़े गुण है उसमें, लंबा आयु जीता है, 700 साल तक जीता है, 400 साल सॉरी, लगभग 300 से 400 साल तक। एक मिनट में मेडिकल साइंस में कहा जाता है वो चार ही सांस लेता है, हम लोग 12 से 20 तक लेते हैं, वो केवल चार ही बार सांस लेता है, 4 times रेस्पिरेटरी रेट 4। इसके लिए बड़ा ही शांत है वो, कभी उत्तेजित नहीं होता है, मंद गति से चलते रहता है। अगर चाइना के वास्तुशास्त्र में जाओ तो जिसको फेंग शुई कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो कछुआ होता है उसका प्रतीक घर में रखना चाहिए, कई लोग रखते भी है, जो सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है और घर की उन्नति होती है उससे। अंगूठी भी बनाते हैं, अंगूठी भी बनाते हैं, तो वो तो सब स्थूल हो गया। हमें उससे गुण उठाना है, कौन सा? समेटने का। वो जल में भी रहता है, उसमें वो भी एक पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कहीं पर भी रहता है अपने आप को मोल्ड कर लेता है, उसी अनुसार ढाल लेता है अपने आप को, जमीन पर भी रहता है। बगीचे में सब जगह रहता है, दोनों जगह, जमीन पर भी, हाँ वही जमीन हो गया, वो सब आ गया उसमें, बगीचा पहाड़ सब कुछ, तो जमीन और पानी दोनों इधर रहता है। तो उससे हमें कौन सी चीज सीखनी है, समेट लेना है स्वयं को, तो पावर टू गैदर, ये पावर उससे सीखनी है, स्वयं को समेटना। उसमें बाबा ने कभी एक मुरली चलाई है, तुमको सरल चित्त भी होना है। अगर सरल चित्त जो व्यक्ति, उसके संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे, वो सरलता का गुण भी चाहिए समेटने के लिए, वो एकाग्रता का गुण भी चाहिए समेटने के लिए, ये सारे ही गुणों की आवश्यकता है समेटने के लिए। फिर बाबा प्रकृति की हलचल के बारे में कह रहे हैं बात, कि परिस्थितियां अभी और विकराल होनी है, सब कुछ विकराल होने वाला है, संसार की जो गति है, समय की गति तेज चल रही है, विकराल गति से चल रही है, सब तरह की हलचल होने वाली है। अभी राजनीतिक हलचल होगी, राजसत्ता हिलेगी, धर्म सत्ता हिलेगी, विज्ञान सत्ता भी हिलेगी, और ये तो है, और साथ साथ और बहुत सारी सत्ताएं जो है प्रकृति विकराल रूप धारण करेंगी, प्रकृति के 5 तत्व तांडव नृत्य करेंगे, मौत का बाजार गर्म होगा। बाबा ने कहा है यहां पर होलसेल मौत होगा, नेचुरल कैलमिटी त्रासदी ऐसी ऐसी आएगी कि उसमें अचल रहना है। हम प्रकृति पति है, प्रकृति जीत अभी बनना है, तो हम उसको शांत कर सकेंगे। सबसे पहले बाबा वर्णन कर रहे प्रकृति के हलचल का, विकराल रूप लेंगे पांचों ही तत्व, भूकंप भी होगा तो ज्वालामुखी भी फटेगा, तो अतिवृष्टि अनावृष्टि सब कुछ होगा, सारे उपकरण फेल हो जाएंगे, जितने साइंस के साधन हैं कुछ काम नहीं करेगा, जो वॉइसलेस होगा वही वायरलेस होगा। एक 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 साथ पांचों ही तत्व क्या हाल होगा, जब एक तत्व हलचल करता है तो क्या हाल होता है, इतने सारे तत्व उसके साथ और बहुत सारी चीजें, आतंकी हमले जैसे अभी अभी जो हुआ परसों शुक्रवार की शाम को, कब हुआ, कुवैत में, फ्रांस में और एक दक्षिण अफ्रीका का एक देश है वहां पर, ये तीनों ही जगह एक साथ आतंकी हमले हुए। कब हुआ, कुवैत में तो कहा गया है कि शाम को, जुम्मे की शाम, जब लोग नमाज के लिए घुटनों पर टेके हुए थे उस समय आतंकी हमला हुआ, छत हिलने लगा, छत फट गया और दीवारें फट गई। परसों 60 से ज्यादा लोग तीनों स्थानों पर मारे गए। फ्रांस में तो एक को तो सरकलम कर दिया। ऐसी ऐसी हलचल होगी, परसों की बात है ये, फ्राइडे। संसार हलचल से गुजर रहा है, प्रकृति के तत्वों की हलचल, एक एक तत्व तांडव नृत्य करेगा, एक एक तत्व ऐसी हलचल लाएगा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी रिहर्सल, बाबा ने कहा ये तो छोटे छोटे पेपर से, फाइनल पेपर तो तब होगा। इसमें भी अगर कोई हलचल में, इस हलचल में अगर कोई स्थिर रह जाए, पर उसके भी ऊपर एक दूसरी हलचल है फिर, अति विकराल। ये था विकराल, ये तो जैसे हमेशा बताता हूं ना, विवेकानंद ने कहा हुआ है, मनुष्य का मन किसके जैसा है, उस बंदर की तरह है। बंदर का स्वभाव पहले से ही चंचल है, चांचल्य उसका, उसकी फितरत में उसका स्वभाव है चांचल, चंचल। अब ऐसा जो बंदर है उसमें क्या हो गया सुशील भाई, नहीं शराब से वो बंदर पागल हो गया, अभी उसकी क्या हालत होगी देखो। फिर किसी ने उसको शराब पिला दी और फिर उसमें एक प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई। अभी ये है तुम्हारा मन, बाबा कहते हैं मन मना भाव करो, अभी इसको इतना चंचल है वो, इतने उसमें हलचल है, ऐसे चंचल मन। तो ये तो था प्रकृति की हलचल, दो हलचल बाहर से है, दो अंदर आंतरिक है, दो बाहर दो आंतरिक। प्रकृति की बाहर से विकार की अंदर से, दूसरी आत्माओं की बाहर से तो संस्कारों की अंदर से, दो अंदर दो अंदरूनी दो बाहर। तो सबसे पहले प्रकृति, और वो भी चलो उसमें भी कोई अचल उड़ल रह जाए, पर उसके बाद है विकार, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार और काम। जो कोई सोचे हमने तो ब्रह्मचर्य धारण कर लिया 20 साल से, काम विकार से अभी हम कोई नाता नहीं, वो काम भी प्रकट होगा। जिसको ढीला छोड़ दिया, ध्यान नहीं रखा, वो सारी वासनाएं फिर उभर कर आएगी और गिरा देगी तुमको। जो समझ रहे हैं हम बड़े ज्ञानी हैं और योगी हैं, ऐसा झोंका चलेगा, ऐसी आंधी आएगी और ऐसी सुनामी चलेगी कि ज्ञान योग के तुम्हारे छोटे छोटे नाव नैया न मालूम कहां चले जाएंगे। इसके लिए निरंतर अभ्यास और निरंतर प्रैक्टिस और निरंतर ज्ञान का चिंतन अति आवश्यक है। इसके लिए हमारी जो सीडी है उसमें क्या दिखाया हुआ है, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, और लास्ट में फिर आ गया मैंने सब कुछ जीत लिया, बस ये मैं आ गया और गिरा दिया, सीधा सांप सीढ़ी का खेल। 99 तक पहुंच गए, 98 तक पहुंच गए, अभी बस दो आने थे पर एक आया तो सीधा जीरो। ये चोट ऐसी है कि मिट नहीं सकेंगी, दंड माफ नहीं होगा। वहीं से चालू करो फिर सब कुछ, जहां से शुरुआत की थी 10 साल पहले वहीं पहुंच गए, अब चालू करो वहीं से सब कुछ। इसके लिए किसी को भी हल्का नहीं समझना, एक एक विकार की विश्व विजयी सेना है, सारे विश्व को अपने वश में कर रखा है और हमने उन्हें ललकारा है। इसके लिए पहले प्रकृति और उसके बाद है विकारों की हलचल, ये भी आ जाएंगे आजमाने के लिए, आजमाइश के लिए आ जाएंगे एक एक विकार। चलो विकारों को भी जीत लिया, अभी क्या, तीसरा तमोगुनी आत्माओं का वार और भक्तों की पुकार। भक्तों की पुकार तो ठीक है, माइल्ड है, ठीक है, सॉफ्ट है थोड़ा, हम उनको सकाश दे देंगे, उनको जो चाहिए नजर से निहाल कर देंगे, जो संपूर्णता की आंख खुले रखेंगे और सब कुछ दे देंगे। परंतु दूसरी आत्माओं का प्रवेश, आत्मा किस शरीर में प्रवेश करती है, वह शरीर की जिसमें वह आत्मा उस शरीर की उस तन की मालिक नहीं है, जो कर्मेंद्रिय जीत नहीं है, विकारों को पूरा अभी तक जीता नहीं है, ऐसी कमजोर संकल्प वाली आत्मा के देह में ही दूसरी आत्मा का प्रवेश होता है। बाइबल में एक जगह वर्णन है, कुरान में भी वर्णन है, राजा सुलेमान के राज्य में, दाऊद का बेटा सुलेमान, उसमें दिखाया है कि उसके राज्य में एक ऐसा कहर बरसा कि जिसमें भूत प्रेत आत्माएं उसके राज्य के एक एक वो जो शहर था वहां प्रवेश करने लगी। कोई खेती कर रहा है, अचानक किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया और वो औजार लेकर मारने दौड़ रहा है दूसरों को, चारों ओर हलचली हलचल हलचली हलचल। कोई काम कर रहा है, अचानक किसी आत्मा ने प्रवेश किया और वो दूसरों को मार रहा है। कोई मां अपने बेटे को लेकर भाग रही है उससे बचने के लिए और अचानक उस मां में एक आत्मा प्रवेश कर गई, तो उसने अपने बेटे को लिया और पटक दिया जोर से, अभी उसके कंट्रोल में है नहीं कुछ भी, क्योंकि वो आत्मा जो प्रवेश कर रही है वो सब कुछ कर रही है। ये इविल सोल्स के अटैक होंगे, बहुत ही भयंकर होगा वो, इसके लिए ये उससे भी भयंकर है, विकारों से भी। वो तो विकार फिर भी हमारे थे, ये तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है, अभी पता नहीं वो कौन सी आत्मा होगी जो हम में प्रवेश कर जाए इसके लिए। परंतु जो शक्तिशाली आत्मा है, जो देह की मालिक है, जो स्वराज्य अधिकारी है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, संपूर्ण समर्पण में जिनकी स्थिति है, मास्टर सर्वशक्तिमान के समान में जो स्थित है, उन्हें कुछ नहीं कर सकती। वो तो ऐसी आत्माओं को भी मुक्ति दिला देंगे। हाँ, उठती नहीं है उसके लिए। चौथी हलचल, ये तो और भी, ये भी बड़ी पावरफुल हलचल है। भिन्न भिन्न संस्कार, जाने से पहले एक बार आजमाने आएंगे, जाने से पहले एक बार वार करेंगे, विदाई से पहले। कौन कौन से संस्कार बताएं? चार प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है बाबा ने इसमें। सबसे पहले कर्म भोग, वो तो चुप तो करना ही है। दूसरे कर्म संबंध के बंधन, तीसरे व्यर्थ संकल्प, और चौथे विशेष आलस्य और अलबेलपन के संस्कार। ये संस्कार अभी भी है कहीं ना कहीं, छिपे हुए, दबे हुए, जिनको अभी तक हमने पूर्ण नष्ट नहीं किया, उनका बीज अभी भी है, उनको तो बस एक हवा की आवश्यकता है, चिंगारी की तरह सुलगेगी, बाहर आ जाएंगे सारे के सारे संस्कार, जिनको हमने सोच लिया था कि ये संस्कार तो मेरा है ही नहीं, अभी हम तो बड़े अलर्ट है, एक्यूरेट है, वो भी निकलेंगे कहीं कहीं से बाहर। तो निरंतर, लास्ट संडे की मुरली थी ना, टीचर्स बहनों को सूक्ष्म पुरुषार्थ अर्थात संकल्पों की चेकिंग, पोतामेल सूक्ष्म हो, संकल्प जैसे साइंस वाले चेकिंग करते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, सिर पर लगा के रखते हैं, जैसे लंदन और अन्य देशों में किया है, वैसे तुम्हारे पास भी संकल्पों की चेकिंग करने के औजार साथ रखने, हर कदम पे साथ रखने, तो संकल्पों की चेकिंग करनी है। और एक इंजेक्शन भी रखने को बोला था, जैसे किसी कोई आत्मा कंट्रोल में नहीं होती है मेडिकल में, जैसे कोई तंग करती है और जैसे पागलों की तरह उछलती है, तो उसे एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है और शांत कर लिया जाता है, तो तुम्हारे पास भी संकल्प शक्ति अगर कंट्रोल में नहीं है और तंग करती है, उसे कौन सा इंजेक्शन लगा दो? अशरीरीपन, कौन सा? आत्मा का अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। यही तो दीर्घकाल का अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास अशरीरी बनने का। बाकी किसने कितना ज्ञान लिया है, किसने कितनी सेवा की है और क्या अनुभव किया है, सबसे मुख्य पुरुषार्थ है देह से अपने आप को अलग कर देना। ये देह अलग और मैं अलग, यह अनुभव, ये देह इधर मैं इधर, देह की इच्छाएं, देह की वासनाएं, देह की आसक्ति, देह के धर्म और देह के बंधन, और देह के संबंध, और देह के कर्म भोग, और देह की बीमारियां, ये सब मैं नहीं, ये दूसरा और मैं दूसरा, मैं अपने सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित हूं, ये सबसे बड़ा अभ्यास है। किसने कितनी सेवाएं की, उससे सेवाओं से दुआएं, परंतु मुख्य पुरुषार्थ ही क्या है? एक ही है। ये सारी हलचल से मुक्त होने के लिए भी बाबा ने क्या कहा? समेटने की शक्ति चाहिए, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की शक्ति चाहिए। वो फुल स्टॉप तो बच्चे भी लगा सकते हैं, बाबा ने कहा। क्वेश्चन मार्क लगाना मुश्किल है, कभी बाबा ने कहा फुल स्टॉप तो अंधा व्यक्ति भी लगा सकता है और तुम तो त्रिनेत्री हो, क्या एक फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकते? इतना छोटा कार्य भी नहीं कर सकते अनुराधा बहन? केवल एक फुल स्टॉप ही तो लगाना है, सारे संकल्प को फुल स्टॉप, बोल को फुल स्टॉप और कर्म को फुल स्टॉप और संबंध संपर्क को फुल स्टॉप। ऐसी प्रकृति की हलचल, वो है प्रकृति की हलचल और तुम प्रकृति जीत अचल। तुम अपनी फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। उसके लिए एक अभ्यास करना है। वो कौन सा अभ्यास है? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, ये अभ्यास करना है। आत्मा स्तन से निकले और स्तन में आए, स्तन से निकलना और स्तन में आना, ये अभ्यास करना है आत्मा को। जैसे साकारी स्थिति को अपनी स्थिति समझते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति को अपनी स्थिति समझो। जैसे वो ड्रेस बदली करते हो, वैसे अब ये फरिश्तेपन की ड्रेस धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता है? चंदाबेन बाबा पूछ रहे हैं, फरिश्तेपन की ड्रेस धारण कर लो। ये अभ्यास जितना होगा उसी अनुपात में अचल रहेगी आत्मा, उसी अनुपात में अचल रहेगी। तो इस अभ्यास को बढ़ाना है। यहां आए हैं सभी तपस्या करने, तो जो करने आए हैं उसको भूलना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण समय है अमृत वेला। अमृत पान करने का समय है। देह से अलग होकर अब तक तो इंद्रियों के सुखों को भोगा है, अब अतिंद्रिय सुखों को चखने का, उसका जायका लेने का समय अब है। तो वह अनुभव करे आत्मा। वो एक बार अनुभव हो गया कि संसार के सुख तुच्छ है उसके सामने, सब कुछ फीका है उसके सामने, बेमजा, व्यर्थ सा लगेगा, वह सुख अगर अनुभव हो गया तो देह से उपराम होने का। फिर बाबा ने कहा इसके लिए एवर रेडी हो या समय का इंतजार है? अगर टाइम बता दे तो टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस नहीं रहेंगे। डेट तो तुमको स्वतः ही टच होगी, डेट स्वतः ही टच होगी। जैसे अभी इन आंखों से दृश्य स्पष्ट देखते हो, वैसे इन एडवांस भविष्य के दृश्य स्पष्ट दिखेंगे। समझा? डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। फिर बाबा पूछ रहे इतना सब बताने के बाद कि मैंने तुम्हें देखो अगम निगम के भेद और राज बताए हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई जो आज तक किसी वेद शास्त्र उपनिषद में नहीं लिखी है। समझा? पर बहुत ही भोलेपन से बाबा पूछ रहे। बाबा एक तरफ चोट भी करता है और एक तरफ बड़ा संभालता है। बाबा कहता है मेरा काम उस कुम्हार की तरह है। क्या करता है वो? चोट भी जरूरत है। संसार में आज तक कई लोग आए, उन्होंने केवल चोटें दी बड़ी बेरहमी से। कुछ लोग आए जिन्होंने केवल संभाला। बाबा कहता है मैं दोनों कार्य साथ साथ करता हूं, एक तरफ चोट भी देता हूं, एक तरफ संभालता हूं भी। पर वो कुम्हार मिट्टी को संभालता है, मैं आत्मा को चोट और संभालता हूं, चोट भी देता हूं और संभालता हूं भी। दोनों कार्य मेरे हैं, इसमें कोई विसंगति नहीं है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मेरा कार्य ऐसा है। इसके लिए आत्मा बाप का बनने के बाद उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती। चोट तो बहुत देता है। चोट देता है कि नहीं बाबा? कि नहीं देता है? वो जानवर अपने बाप को भूलते नहीं और तुम बाप को भूलते हो, तुमको शर्म नहीं आती? पर इतना बोलने के बाद भी आत्माएं छोड़ती नहीं उसको। क्यों? क्योंकि कुछ और भी करता है साथ साथ। प्यार भी ऐसा देता है कि तेरे प्यार के आगे वो चीज फीका, वो ताज फीका। ऐसा प्यार देता है कि जो कभी आत्मा ने अनुभव ही नहीं किया आज तक। रोम रोम प्रेम से भर देता है, प्रेम का सागर। ऐसे ऐसे वाक्य भी कहता है जो चोट देते हैं थोड़े थोड़े, पर साथ साथ और भी बहुत कुछ कहता है, तुम्हारे दो सर्वेंट है, बाप तुम्हारी सेवा में आया हुआ है, हे मेरे मालिक कहो मैं क्या खिदमत करूं। वंदे मातरम कहा माताओं को बाबा ने, जिन माताओं को संसार ने क्या कहा, पैरों की जूती, बाप ने सिर का ताज बनाया, जिन्होंने ठोकर लगाई बाप ने ठाकुर बना दिया, दिल में बसा दिया, ऐसे काम कर दिया, इसके लिए उसको छोड़ने की भी दिल नहीं होती है। फिर चोट पर बहुत देता है, देता है कि नहीं, व्यंगबान भी बहुत छोड़ता है बीच बीच में, पर उसके प्यार में बंध जाती है आत्मा। प्यार भी ऐसा जगत से न्यारा जो कभी अनुभव ही नहीं किया, वो तुम्हारे पास आया है नहाने के लिए, कैसा अद्भुत सा वाक्य है, कभी सोचा ही नहीं था ऐसी, क्या वाक्य है ये, जबरदस्त अद्भुत अनूठा अद्वितीय। वही तो कहां थे हम, हम वो तो हो गया। तो अंत में मुरली का अंत समझा, यहां पे बाबा ने कहा ये अभ्यास करते रहो, साकारी आकारी निराकारी का अभ्यास। इसमें समान क्या क्या निकले फिर इस मुरली से, यहां तक की मुरली से, हम कौन है, नूरे रत्ने बाप की, नैनों के सितारे हैं, प्रकृति जीत, एक पॉइंट और रह गया, जागती ज्योत। बाबा ने कहा सदा जागती ज्योत रहो, इष्ट देव और इष्ट देवी है, भक्तों को नैनों से निहाल करने वाले है, प्रकृति जीत प्रकृति पति, समेटने की शक्ति वाले, फुल स्टॉप लगाने वाले, और धारणा के लिए मुख्य धारणा के लिए नहीं, याद प्यार में और एक है, बाप के सर्व संकल्पों को पूर्ण करने वाली आत्मा है, आशा के श्रेष्ठ शुभ आशा के दीपक, फुल स्टॉप लगाने वाली ऐसी महान आत्मा है, बाप भी जिनको याद प्यार और नमस्ते करता है, इधर कुछ कुछ बोलता भी है और लास्ट में फिर प्यार भी करता है, इधर से ठोकता है और इधर से हाथ रखता है नीचे, दोनों कार्य साथ साथ करता है। फिर त्रिवेणी संगम, यूपी को क्या कहा बाबा ने, यूपी वाला है कोई इधर, क्या कहा यूपी वालों को, वो तड़प रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो हे मास्टर भगवान तैयार हो जाओ, तो दर्शन का पर्दा खुले, और दर्शन का पर्दा है समय। और क्या कहा यूपी को, जो किसके स्थान है, धर्म के स्थान है, उसको क्या कर दो पूर्णिमा बहन, अनुभव केंद्र, जो पार्टियों से मुलाकात और ये लगभग सेम ही है, अनुभव केंद्र बना दो इसको, कैसे बनाओगे वो तो आगे बोला है कि क्या करो, भक्ति से जब वैराग आएगा तब ज्ञान का बीज पड़े, भक्ति से जब उपराम हो जाए तब ज्ञान का बीज पड़े, पर यहां क्या कहा है, गली गली में क्या हो, सेवा केंद्र हो, ये मुकाबला है किसका और किसका, कौन जीतेगा इस मुकाबले में, ज्ञान और भक्ति नमस्कार करेगी ज्ञान को, भविष्यवाणियां कर दिए बाबा ने, यूपी को क्या कहा, यादगार बन जाए, तीनों कार्य तीनों 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 को एक साथ हो, इस कर्तव्य में तीनों बिजी रहे तो जय जयकार होगी, घर घर मंदिर नहीं है, गली गली में मंदिर है, घर घर मंदिर बनाना है। तो उसको ये कर दो, फॉरेन को क्या कहा, फॉरेन करने वाले, फॉरेन को क्या कहा, आवाज निकलेगा फॉरेन से, फॉरेन को क्या कहा, गहनों के बीच में क्या कर दो, हीरा लगा दो, गहने तैयार है, अब बस हीरे लगाओ, हीरो हीरोइन पार्टधारी हो तुम, दिल्ली को क्या कहा, राजधानी बननी है, जमुना के किनारे क्या, अभी क्या बना है, राजयोग भवन वो बन जाएगा महल, राजयोग प्लेस वो बन जाएगा राजयोग पैलेस, ये है वो बन जाएगा, तो ये करना है, दिल्ली वालों को भी करना है और यूपी वालों को कुछ कहा है? धर्म का खेल, धर्म युद्ध का खेल जिसमें मुकाबले की बात की, और आगे धर्म नेताओं के लिए भी कहा है, और फिर आगे पार्टियों से में लगभग इसके जैसा ही है वो भी। अभी तो केवल आंख, बड़ी बड़ी आंख, बड़ी नहीं ऊंची आंख करते थे अब तक, अभी आंख थोड़ी झुकाई है, अभी सिर नहीं झुकाया। सिर कब झुकेगा? वो अभी तुम्हें अपने मंच पर बुला, तुम अभी उनको अपने मंच पर बुलाते हो, अपने स्टेज पर। एक दिन वो तुम्हें मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में अपने मंच पर बुलाएंगे, तब समझना आंख अभी, सिर अभी झुका है, अभी तक नहीं झुका है। अभी वो पार्टियों से मुलाकात आगे, तो हम क्या कर रहे हैं? वो ये अनुभव करेंगे, वो क्या अनुभव करेंगे? हम छाछ पी रहे और ये मक्खन खा रहे, हम सुन रहे और ये सुना रहे, हम ढूंढ रहे और इन्होंने पा लिया। इस बाप के नॉलेज के आगे बाकी जो भी नॉलेज है नीरस, रसहीन, स्वाद रहित अनुभव होगा उनको, बिना रस के। और जब तुम सेवा के निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं क्या करोगे? सर्व अनुभव के रस में रहोगे, तो उनको क्या अनुभव होगा? निरस अनुभव होगा। फिर वापस वो गली गली में बात, फिर वापस वो वैराग की बात, कि भक्ति से वैराग आ जाए, ज्ञान का बीज पड़े, तो जैसे विदेश से, फॉरेन से आवाज निकलेगी, वैसे ही जो नाम, जो भक्ति के, जो धर्म, धर्म नेता, हाँ आशीष भाई कहाँ है? आज ही बताया था आपने। तो जो भक्ति के जो स्थान है, भक्ति के स्थान से क्या हो जाएगा? नहीं, उसके पहले वो भी एक पॉइंट है, स्नेह। इसके लिए क्या करो? तो जो स्नेह मिलन करो, पहले इसमें मेहनत है और फिर बाद में वो स्वतः ही आगे बढ़ेंगे अपना संगठन बनाकर। तो उसके लिए भी वो जो स्नेही है, कुछ स्वार्थी है, नामी ग्रामी नामचिन, तो उनके लिए ये करो, ये संकल्पों से, संकल्प की सेवा से तुम परिवर्तन करते हो, वायुमंडल को बदल सकते हो, ये कार्य उससे भी होगा, बाबा ने कहा। और फिर वो वाली बात, जैसे आवाज निकला है वैसे यहां से क्या आवाज निकलेगा आगे, कि भक्ति तो बहुत की है परंतु मिला कुछ नहीं, और कुछ चाहिए, भक्ति का फल नहीं मिला है। धर्म नेताएं भी ऐसे कुछ कहेंगे, धर्म नेता क्या कहेंगे? कि धर्म में फूट पड़ी है, धर्म में फूट पड़ी है, टुकड़े टुकड़े, खंड खंड विभाजित हो रहा है धर्म। दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद में बाल्कन्स करके कंट्री है यूरोप में, वहां पर इतना भयंकर युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ? क्रिश्चियनिटी की दो शाखाएं है, रोमन कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स, अभी एक ही धर्म के बीच में झगड़े हुए। इतना बड़ा हत्याकांड था वो, लगभग 5 लाख स्त्री और पुरुष उसमें मारे गए। दोनों ही कौन है? जीजस क्राइस्ट के अनुयायी, जीजस क्राइस्ट के नक्शे कदम पर चलने वाले दोनों ही, ऐसा उन दोनों का दावा है, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। एक ही धर्म की दो शाखाएं एक दूसरे से लड़ रही है। तो यही कह रहा है ना बाबा, कि धर्म में टुकड़े टुकड़े क्यों हो रहे हैं? हमारा धर्म तो सबसे बड़ा है। अच्छा, तुम्हारा सबसे बड़ा है, फिर वो खंड खंड क्यों बट रहा है? क्यों उसमें फूट पड़ रही है? ये जब होगा, ऐसा जब प्रश्न होगा, तब प्रत्यक्षता होगी कि और कुछ चाहिए। जो चाहिए था, भक्ति से आशाएं पूर्ण नहीं हुई, जो चाहना थी वो पूर्ण नहीं हुई, भक्ति का फल नहीं मिला, ये सब प्रश्न उभरेंगे उनके मन में। ये क्वेश्चन से ही प्रत्यक्षता होगी, ऐसी हलचल होगी उनमें, ये सारी सत्ताएं हिलेगी, बाबा ने कहा है ना, सारी सत्ताएं जो भी है हलचल में आ जाएगी। तो इसमें से समान कौन कौन से है? मैं मास्टर भगवान हूं, मैं भक्तों को निहाल करने वाला हूं, मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूं, मैं जान का नूर हो गया, ये इधर से प्रकृति जीत हो गया, नहीं इधर से अभी लास्ट से ना, इष्ट देवी दर्शनीय, हाँ दर्शनीय मुहूर्त का पॉइंट हमने बोला नहीं जो मुरली में था, हाँ श्रेष्ठ आत्मा है, दर्शनीय मुहूर्त और मास्टर सर्वशक्तिमान। अरे क्रिश्चियन का ये क्रिसमस का रह गया ना, क्रिसमस में क्या कहा बाबा ने? किशमिश जैसे, आशीष भाई कैसे बच्चे हैं? किशमिश जैसे बच्चे हैं। तो जैसे बाबा सौगात वरदान लेकर आ गया है, बाबा किसकी मुबारक दे रहे हैं? नया उमंग, नई खुशी, खुशी में खुशी, खुशी की खुशी है उसमें एक वाक्य, ऐसा भयंकर शब्द लिखा है, खुशी में खुशी, नए खुशी की तरंगों की भरपूर खुशी, ऐसा कुछ लिखा है उसमें। तो इसकी मुबारक जय। हाँ, अरे हाँ, भोले भोले वाला रह गया हमारा, वो बड़े भोले हैं, तो उन पर रहम करो, संगठित रूप से उनको ठिकाना दिखाओ, संगठित रूप से, तो क्या हो जाएगा, नंबर वन आ जाएंगे, तब नंबर आएंगे। तो यहां मैं रहम दिल हूं, ये भी आ जाएगा, भक्त वत्सल हम है, मैं एकाग्र चित्तात्मा हूं, ये भी हो सकता है। फिर कृष्ण यहां पे क्या बोला, क्रिसमस के लिए, और नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से सर्वशक्तियों का पैकेट और सौगात देते, मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मायाजीत बनने की बड़े से बड़ी सौगात बाप तुम्हें देते, जैसे वहां पर हाथ में हाथ डालकर डांस करते हैं, वैसे तुम बाप के साथ खुशी से वर्ष भर, वो एक दिन तुम वर्ष भर क्या करो, नाचते रहो, डांस करते रहो बाबा के साथ, कंबाइंड भव, वरदान दिया है बाबा ने, संयुक्त भव, बाप के साथ में कंबाइंड, ज्ञान गंगा है, त्रिवेणी संगम, उसमें और एक पॉइंट रह गया है कोई, तो एक पॉइंट है, चलो वरदान, वरदान भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। इस रावण राज्य का कोई भी विघ्न परिस्थिति व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, हमको हलचल में नहीं रख सकता, हम अंगद समान है, अचल आत्माएं हैं। अगर विघ्न भी आते हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाओ, विघ्न आते हैं किस लिए आते हैं, मजबूत बनाने के लिए आते हैं। एक किसान था जो भगवान से बहुत शिकायत करता है कि हे प्रभु, तुझे तो बिल्कुल खेती करना नहीं आता, जब कभी भी चाहो बारिश भेज देता हूं, भेज देते हो, कभी आंधी आती है, कभी तूफान, कभी ओले, ये क्या करते हो तुम, तुमको तो पता ही नहीं कभी बारिश आती नहीं, हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। भगवान कहता है तो एक काम करो, एक साल तक तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा, जब तुम बोलोगे तब बारिश होगी, जब तुम धूप चाहोगे तो धूप होगी, जब तुम सब कुछ चाहोगे तो सब कुछ होगा। टाइम हो गया? तो जो तुम चाहोगे तब होगा। तो वो किसान बड़ा खुश हो जाता है, अब मैं बताता हूं भगवान को, कि उसे तो आता ही नहीं है फसल कैसे करना, अब मैं बताता हूं। वो अपनी इच्छा से जब बारिश चाहिए तब बारिश आती है, जब अपनी तूफान ओले और आंधी तो कभी नहीं लाने देता है, उसको हटा ही देता है, बस केवल इतना ही। और उस समय उसका गेहूं की जो बाले होती है, गेहूं की बाले कहते हैं ना, वो इतनी बड़ी बड़ी होती है, बड़ा खुश हो जाता है देखकर, अब कहता है अभी आने दो भगवान को, बताऊंगा उसे कैसे की जाती है खेती, किसानी उसको तो आती ही नहीं है, मैं उसको समझाऊंगा अभी कैसे की जाती है खेती। देखो कितना जबरदस्त, मैंने इतनी बड़ी बड़े, और फिर वो जब वो गेहूं की बालों को काटता है, वो जो बाले उसमें गेहूं ही नहीं रहते, तो वो भगवान से कहता है ये क्या हुआ, तो परमात्मा आते कहते अरे पागल, आंधी भी चाहिए और तूफान भी चाहिए और ओले भी चाहिए तभी गेहूं आएगा, आंधी चाहिए, मजबूत नहीं बनेगी बिना विघ्नों के आत्मा, सब कुछ चाहिए। हम अगर सोचे कि हमारे जीवन में कोई विघ्न न आए तो हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे, हथौड़ा तो लगना ही चाहिए, मूर्ति तैयार कर रहा है भगवान, व्यर्थ को तो हटाना ही है उसको, मूर्ति तो है, व्यर्थ को हटाना है बस। तो विघ्न परिस्थिति समस्या व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा विघ्न सब कुछ आएगा, उन सब से कंफ्यूज नहीं होना, उन सब वो किस लिए आ रहे बाबा के कहा मुरली में, मजबूत बनाने के लिए आए, शक्तिशाली बनाने के आए, क्योंकि एक बार विघ्नों से निकलकर हम वो नहीं रहेंगे जो पहले थे, अब हम और शक्तिशाली बन गए हैं, हम वो नहीं रहेंगे, अगर हम किसी परिस्थिति से गुजरे हैं तो हम कुछ और है अब, जो कि पहले से और अधिक शक्तिशाली है, अभी हमारे में वो पावर है कि हमारे सामने कोई दूसरी आत्मा आ जाए उसी विघ्न के साथ, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि हमने ये गलती की है पर तुम ये गलती ना करना, हमारे में वो पावर है, अभी हम सीखे हैं किसी पुस्तक से नहीं, किसी शास्त्र से नहीं, किसी से कहा हुआ नहीं, हम अपने जीवन के अनुभव से, हमने चोट खाई है, हथौड़ा हमको लगा है थोड़ा थोड़ा। इसके लिए हम अब सीख चुके हैं, अब हम वो पोजीशन में हैं जो दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात हुई या खराब बात हुई? अच्छी हुई ना। तो विघ्न आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? बाबा ने कहा ना, ऐसे समय का आह्वान करो। मुरली में एक जगह ये भी वाक्य है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। ये भी एक वाक्य रह गया था ये सर। एक सेकंड में, वेरी गुड। तो एक सेकंड में इस देह से अलग हो जाना है, इस देह को नीचे छोड़ दो, साकारी से आकारी और आकारी से फरिश्ता स्टेज में एक सेकंड में स्थित हो जाना। तो इस मुरली से क्या होमवर्क लेंगे हम सब? एक तो अपने अंदर समेटने की शक्ति धारण करना है, अपने आप का विस्तार नहीं करना है, खुद को समेटना है, संकल्पों को समेटने का अभ्यास, और ज्यादा से ज्यादा रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। वो भी केवल अमृत वेले नहीं और केवल नुमा शाम के योग में नहीं, परंतु अपनी दिनचर्या में। बाबा ने कहा है ना, अति के समय अंत की स्टेज का अभ्यास करना है। लास्ट संडे के लास्ट संडे के लास्ट संडे, अति के समय अंत की स्टेज। तो बीच बीच में अशरीरी होने का अभ्यास, बीच बीच में शरीर से अलग होने का अभ्यास, बीच बीच में फरिश्ते की ड्रेस धारण करने का अभ्यास, और कर्मातीत उस परम धाम की अवस्था में लंबा समय टिकने का अभ्यास करना है। हमारा अमृत वेले का जो योग है वो इतना शक्तिशाली हो कि उसमें हम जब निकले तो ऐसा लगे कि जैसे आत्मा में कुछ भर गया है जो नहीं था, ऐसी न्यू पावर एक भर गई है उसमें, इतनी हमारी शक्तिशाली स्थिति हो। तो परम धाम में लंबा समय टिकने का अभ्यास करना है। एक है इसी तन में स्वयं को आत्मा समझना, देह से अलग समझना, इसी तन में स्वमान का अभ्यास करना। एक है फरिश्ता स्वरूप में बाप से सर्व संबंधों का अनुभव, जैसे बाबा ने तिलक दे दिया, बाबा ने हाथ रख दिया, उससे रूरियान सर्व संबंध उससे निभाना। और उसके भी ऊपर की जो स्टेज है वो परम धाम में टिकना। परम धाम के जैसे हम यूजुअली करते हैं कि उसका जो एक एक नाम है उस नाम में स्थित रहना। मैं ब्रह्म लोक में हूं तो चारों ओर ब्रह्म, मैं शांति धाम में हूं तो चारों की तरफ की शांति मुझ में समा रही है। एक एक स्वरूप जो लंबा समय उसमें टिकना है। मैं निर्वाण धाम में हूं, यहां कोई आवाज नहीं। मैं निराकारी दुनिया में हूं, यहां सभी निराकारी आत्माएं। मैं निर्विकारी दुनिया में हूं, यहां सभी निर्विकारी आत्माएं। ऐसा करते करते ये जो पांच मिनट है, पांच मिनट को दस मिनट, पंद्रह मिनट, और लंबा करते करते उसको आधा घंटे से भी ज्यादा केवल परम धाम में निरसंकल्प अवस्था में टिकना। स्वीट साइलेंस होम, तो उस साइलेंस में टिकने का अभ्यास करना। तो इससे एक तो पुरानी स्मृतियां जो है वो भूलती जाएगी और आत्मा में पावर भरती जाएगी, नई शक्ति उसमें आएगी। इसके लिए अभी ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हमें उस ज्वालामुखी योग जिसको कहते हैं बीज रूप स्टेज जो है वो स्टेज का अभ्यास करना है। क्योंकि उसको बाबा ने कहा अपनी स्टेज समझो, ये मैं हूं, ये आत्मा मैं हूं। जैसे इसको अपना स्टेज अपना समझते हो, अभी उसको अपना स्टेज समझो, उस स्थिति को, उस स्वरूप को। ये अभी हमको करना है। और फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप में अमृत वेले जाकर विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज करना, दुखी आत्माओं को इमर्ज करके उन्हें सुखी सुख की किरणें देना, अशांत आत्माओं को इमर्ज करके उन्हें शांति की किरणें देना, रोगी आत्माओं को इमर्ज करके फिर पवित्रता की किरणें देना, दुखी उदास आत्माओं को इमर्ज करके उनमें उमंग उत्साह भरना, खुशी भरना, ये सारे हमारे कर्तव्य है। बाबा ने कहा ना, ये भी एक वाक्य रहेगा, ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य, इस स्थान को वो स्थान कर देना। तो ये सारे हमारे कर्तव्य है। बीच बीच में पॉइंट्स याद आते हैं। तो हमारी बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ हो, बस निकले तो वो ज्ञान ही निकले, इतना उसमें लबालब भरा हुआ हो, तो ही हमारी स्थिति ऊपर जाएगी। केवल बाबा के कमरे में योग करते रहने से नहीं, ज्ञान का चिंतन, मनन, अध्ययन, मुरली एक बार सुनी, फिर दो बार पढ़ना, और तीसरी बार रिवाइज करना उसको, मुरली की चर्चा करना, डिस्कशन करना, ये सारा हमारे दिनचर्या का जैसे दैनंदिन कर्म हो जाए, ये सारा चीजें करनी है। मैं बात कर रहा था उस स्थिति की, तो किस किस को सकाश देना, ये सारी हमारे सामने आत्मा है, संसार की सभी आत्माएं को रोज, भक्तों को इमर्ज करना, सन्यासियों को इमर्ज करना, संसार की सबसे पतित आत्माएं उनको इमर्ज करना, उनको शक्ति देना, सकाश देना, ब्राह्मण आत्माओं को भी इमर्ज करना और उनमें भी पवित्रता की पावर भरना, सभी ब्राह्मणों में एक एक स्थान पर जाकर, सेवा केंद्र पर जाकर, जो कि अनुभव केंद्र आज बाबा ने नाम दिया उनको, उसमें भी इतनी पावर भर देना, और कुछ विशेष आत्माओं को जिनको आप जानते हैं उनको स्पेशल सकाश देना, आत्माओं को माफी मांगना, आत्माओं को माफ करना, आत्माओं को धन्यवाद करना, आत्माओं से रूहरियान करना, सब कुछ आत्मा के स्तर पर होते रहे, बौद्धिक स्तर पर ये सब चल रहा है, जिससे देह के जो स्तर है, जो देह की बुद्धि है, देह को देखना, देह की तरफ आकर्षित होना, ये धीरे धीरे मिटता जाएगा। ये तभी होगा जब ये करेंगे। आज तक संसार ने तो सभी ने कहा है कि देह से वैराग होना चाहिए आत्मिक, परंतु संसार का ज्ञान आत्मा में, संसार का जो अध्यात्म है आत्मा तक आकर रुक जाता है, हमारा आत्मा से चालू होता है। हमारी कोर्स की बुक में पहला चैप्टर आत्मा का है, जबकि वेद, वेदांत और उपनिषद आत्मा पे आगे रुकता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। वो बातें तो उन्होंने भी कही है, पर हमारा ज्ञान कुछ और है, आगे का है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा जो इंटरेक्शन है वो आत्मिक स्तर पर हो, देह के स्तर पर ना। स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री, ये न देखकर आत्मा देखने का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि की साधना करनी है। टाइम हो रहा है, ओम शांति। एक मिनट योग करते फिर चलेंगे, आधा मिनट।